चंद्राय गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे आज हम लोग गोकुल रावल ब्रह्मांड भाग गोकुल महावन स्थानों में गए थे. वी वेंट इन जावट रावल ब्रह्मांड घाट एंड देन टू गोकुल महावन एंड देन रिटर्न हियर. गोकुल इज लाइक अंतरदीप. अंतरदीप उसे क्यों कहते हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा कृष्ण लीला में ग्वाल बालों का जो अपहरण किया उसे अपराध किया और बड़े अनुतप्त हुए. वे अपने अपराधों के लिए गौचंद्र जी से क्षमा की थी, मांगी थी, आराधना की थी. गौर लीला नित्य है, केवल आविर्भाव तिरभाव होता है, इसलिए गौर लीला का आविर्भाव होने से पूर्व ही गौर की आराधना हुई. महाप्रभु अभी जन्मे नहीं, उनकी आराधना आरंभ कर. क्यों? क्योंकि नित्य है. और उन्होंने मन ही मन में भगवान ने कृपा करके गौर सुंदर रूप में उनको दर्शन दिया अंतर हृदय में, इसलिए अंतर हृदय से अंतर दीप बन गया. जिस दीप में ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने स्फूर्ति कराई और उनके अपराधों को क्षमा किया, इसलिए उसका नाम अंतर दीप और आजकल नाम आतापुर है. और ब्रह्मा जी को बोला, मैं जगत में कीर्तन धर्म के माध्यम से, नाम के माध्यम से प्रेम का प्रचार करूंगा, राग मार्ग का प्रचार करूंगा और अपनी तीन वांछाओं को पूर्ण करूंगा. उसमें तुम जिस समय आऊंगा तो तुम भी आना. तो वे हरिदास ठाकुर के रूप में पधारे थे, क्योंकि उस समय उनका बड़ा अभिमान था. नीच कुल में जन्म लेने से अभिमान नहीं होगा, इसलिए इस जन्म को लिया. वहीं पर महाप्रभु जी का जन्म 23 फाल्गुन 1407 शकाब्द 28 फरवरी 1986 को संध्या के समय में चंद्र ग्रहण के साथ साथ में हुआ था. जब प्रकट हुए तो वो कीर्तन बच्चे के अवस्था में लोग कहते थे हरे कृष्ण हरे हरी बोल हरी बोल, तो प्रसन्न हो जाते और नहीं तो रोते रहते थे. इस तरह से संकीर्तन के माध्यम से वो रहते. वहीं पर महाप्रभु जी का श्रुतिका गृह है, जहाँ पर कि जन्म लिया था. क्षेत्रपाल शिव या गोपेश्वर महादेव वहीं पर है. नृसिंह देव का पीछे मंदिर है. गौ कुंड है जिसमें कि लोग स्नान करते हैं. वृद्ध शिव या शिव डोबा, वहां पर प्रौढ़ा जोग माया और वृद्ध शिव है। वृद्ध शिव माने सदाशिव, महाप्रभु जी का घाट है। जगाई मधाई को जहां पर उद्धार किया था वो घाट है। नगरिया घाट है जहां केशव काश्मीरी को उन्होंने हराया था। बारकोना घाट है, नगरिया घाट जहां पर कि गंगानगर में स्थित है, गंगादास जी का टोल था, पाठशाला, वहीं पर महाप्रभु पढ़ने के लिए जाते थे। उसमें पुरुषोत्तम आचार्य स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त, गदाधर पंडित, जगदानंद इत्यादि महाप्रभु के बाल सहपाठी थे। गंगानगर आजकल गंगा जी के गर्भ में है, यहीं पर गंगादास की पंडित थे। खोल भांगा डांगा अथवा श्रीवास अंगन वहीं पर है, गंगादास। इसके बाद में पृथक रूप में अपना टोल बना लिया। अद्वैत भवन है, गंगा गदाधर पंडित जी का आंगन है, स्वरूप दामोदर जी, जगदानंद पंडित। वहीं पर राधा कुंड, श्याम कुंड है, पृथु कुंड या बल्लाल दीघी है, मुरारी गुप्त का पाठ है, श्रीधर अंगन है, चांद काजी की समाधि है और श्री ईशोद्यान नंदन आचार्य का भवन। मैंने संक्षेप में बताया। अब ये सब लोग कुछ कुछ इस विषय में बोलेंगे। इसके पहले I told you all these things, they are in Mayapur. First, Radhyanti Maharaj will speak on the subject Guru Nishtha. He should come. Where he is? He should come. Stand up and speak on Guru Nishtha.
Hare. The mercy of Bhagavan will follow his mercy as a shadow. Though he transcends from our part, we will be blessed with Parabhakti. And the exact verse which I mentioned, it said that we have to have not just ordinary faith, but especially Parabhakti, the transcendental faith. There are two types of Shraddha, the Laukika and the Paramarthi. For the beginner in a passive devotional service has an intellectual conviction that his guru is as good as Bhagavan. But when one is advancing on the path of bhakti, this Laukika Shraddha will gradually cause mercy of guru and Vaishnavas, turning him to the third transcendental realization. So when someone is blessed by this firm transcendental realization that his guru is as good as Bhagavan, then his position is practically perfect and empowered. He cannot deviate from the best of devotional service. Only very fortunate souls are blessed with such a high transcendental realization. There is a Bengali proverb which says that even if my guru goes to the bar, I will still accept him as good as his own guru. But when someone has this kind of faith, then
what is
he will be blessed.
Huh?
If my guru goes to the place where drinking alcohol,
the bar. No, he doesn't say for drinking alcohol, for going to the bar.
No.
For Nityananda Prabhu, not for Guru. General Guru, no. If your Gurudev is going to prostitute, if he is taking
alcohol,
he is not in the line of Gurudev, he should be rejected.
I didn't say drinking alcohol. The meaning is that if the guru goes to the bar, he may go there to preach. So if someone has a doubt, the guru
is for Nityananda Prabhu only. Not for any other guru.
The guru is the manifestation of
Nityananda. No. Try to know this. That guru should be rejected.
But sometimes the guru tattva is inconceivable. It says that
guru tattva is very easy. Very easy for a disciple who is very sincere.
Gurudev said that in 1990s that guru tattva is inconceivable. And because it's very difficult to understand how he's simultaneously a manifestation of Bhagavan and he's non-different from Bhagavan. And because Guru has two aspects. So sometimes Sri Guru acts in a conceivable manner. He may say, this is black, and disciple says, yes, this is black. But then Guru says, no, this is white. And disciple has to say, yes, this is white. But then the Guru may say, why do you call it white? This is black. So then the Indian disciple wants to say, this is black.
Guruji, if Guru is drinking alcohol and he is telling that it is a Charanamrita, will we accept it?
No.
It means that disciple is bogus. So, Guru should be high class of Guru, who is observing all the Shastra, शास्त्र की बातों को मानते हैं ही यस दैट इज व्हाई इट हैज बीन टोल्ड इन गौड़ीय कंठहार ऑल द सिम्टम तस्मात् गुरुं प्रपद्येति जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम प्रत्यागो एव विधीयते इफ गुरु इज नॉट फॉलोइंग नॉट following the order injection of Gurudev Shastra, he should be rejected. So a disciple should also be sincere. to know that what guru wants really and his guru or not. If he has not, he is not qualified for guru, oh, he should be rejected at all. And a Vaishnava guru should be done. So try to understand. If you are in confusion, then muskil. It is very what? Dangerous. You should know all these things. You should be very strong to follow Gurudev. If Gurudev rebukes anyone, even he gives a slap, and Guru is bona fide, then you have to come in his orders. Unke shasan mein aana hoga. Discipline. Go on. No. Are finished.
As you order, you
thank you. Try to follow all these things. What you are telling, you should try to follow. Thank you. Banbara. Antardip ke sambandh mein kuch bolo. Antardip ke sambandh mein kuch bolo. Wahan par jo jo sthan hai, ya unme se koi ek vishay par lekar ke bolo. Ek vishay par usme se bolo ya haan, Mahaprabhu ki katha hai. ওখানে জন্ম নিয়েছেন কিসের জন্য?
और आई लोग चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे तो नाम संत पादे काफी कैसे व्यक्ति हो जो अर्जुन को सब करते थे कृपा करके जो प्रदान करके उनके हृदय में प्रेम भाव संचार जिसके हमें विश्वास कृपया चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के मंत्र वंदना इस प्रकार करते हैं दत्तम निज गोपित सत्ते
उन्हें दंड दिया और उनके भी अस्त्र के द्वारा
वे भगवान एक चैतन्य महाप्रभु ऐसे इस अवतार में हमने कोई अस्त्र धारण केवल श्रीनाम के महाअस्त्र को लेकर के उन्होंने चित्त के स्वतंत्र करके सबके हृदय में प्रेम संचार कर दिया। ऐसे भी व्यक्ति को धारण जगाए माधा है ऐसे व्यक्ति के भी केवल प्रेम नाम प्रेम देकर के उत्थान इसलिए प्रेम धन की भंडार सर्वत्र महाप्रभु वितरण केवल महाप्रभु नहीं महाप्रभु अपने परिवार के द्वारा यह प्रेम धन सर्वत्र यदि महाप्रभु नहीं आते आज हम इस प्रेम धन की महिमा कैसे इसलिए कृपा में यदि गौरांग नहीं तो तभी भी हुई तो क्या मैं धन काम दे राधा को महिमा प्रेम रसमा जगत जान इसलिए आचार्य बार बार हैं मेरे चैतन्य महाप्रभु इस धरधाम में प्रकट नहीं होते राधा के महिमा कौन वर्णन करते विशेष करके आज राधा मंदिर स्वयं मंदिर कौन जानते महाप्रभु के आने के पहले ब्रजवासी लोगों के भी पता नहीं था कहां पर राधा मंदिर स्वयं मंदिर है वो लोग यह तो जानते थे एक गोरी खेत और एक काली खेत के किंतु श्री महाप्रभु बहुत सुंदर आकर के यह राधा मंदिर और संपूर्ण कृष्ण संपूर्ण के प्रकट प्रकाशित की रूप सनातन आदि के द्वारा भक्ति राज भक्ति की संचार के भक्ति के सर्वत्र प्रचार की किसको ब्रज भक्ति कहते हैं किसको राग भक्ति कहते हैं ये समस्त भक्ति के तार तो भी इसको तो प्रचार कराया सब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचार करके भक्ति के महिमा दिखाया इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विशेष वचन लगा इसलिए विश्वनाथ चतुर्थी बात कर रहे महाप्रभु के मत क्या है
Thank you.
आत्मा बीच के सिद्धों में तला अमृतम वर्तमान मैं आत्म है छो अल्प इस संसार में मरण से जीव हम कट करते कोई सुभक्त वस्त्र ऐसे भी प्रचलित है और तुम हम संपन्न गुरु के चरणासन कर जैसे आगे अभी श्री गुरु महाराज जी वधि गुरु निष्ठा की बात करते हैं पश्चात की सिद्धि गुरु के चरण में निष्ठा नहीं हो वो भजन के बाद क्यों गुरु भक्ति ही हमारे भजन की रीढ़ का जिसके हृदय में गुरु जिसके हृदय में गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है वो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के एकत्र जान करके उनके चरण में दृढ़ निष्ठा रखना निष्ठा शब्द का निष्ठा निश्चित रूप में स्थिति को कभी तस्य मस्य नहीं हो सकते हैं प्राण जाए गुरु वचन न जाए इसी प्रकार गुरु पाद के चरण में निष्ठा रख करके व्यक्ति भजन करते हैं जिसने पता है मत दात संस्थ का निवेदित आत्मा निवेदित आत्मा जय अपने स्वस्थ को गुरु के चरण में समर्पित कर देते हैं ताय मन वज्र शरीर के द्वारा सब कुछ गुरु के चरण में जब समर्पित कर देते हैं तब भगवान कहते हैं बीच के स्थितों में उनके हृदय में कुछ भी थोड़ा सा बीच रह गया मैं उसकी चिकित्सा करता हूं क्यों कहते हैं भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मेरा प्रिय मन गुरु के चरण में समर्पित कर दिया इसलिए इनके हृदय में कुछ भी थोड़ी सी रह गया ये मैं ही चिकित्सा तदा मतलब भौतिक अल्प पते बड़ी और वो उसको मैं संपूर्ण रूप से आत्मसात कर रहे दिक्कत करे शिष्य जो करे आत्मसमर्पण सही देह है तार चिदानंद मय अप्रकृत है श्री कृष्ण जगत इस प्रकार भी वर्णन आता है दिक्कत करे शिष्य करे आत्मसमर्पण दिक्कत के समय शिष्य जब गुरु के चरण में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देते जैसे चित्र महाप्रभु ईश्वर परिवार के निकट अपने के समर्पण कर दिया ये जो समर्पित हूं तुम्हारे चरण इस धर्म में आपके सामने समर्पित कर दिया अपने आय मन जो कुछ भी है सब कुछ उसी प्रकार का ये दिक्कत करे शिष्य करे आपको समर्पण सही तरह भाता चिदानंद मन उस प्रेम के देह चिदान चिदान मात्रता प्राप्त करता है तब भगवान उनके हृदय में स्वस्थ प्रकार की सेवा वासना जगाते हैं और तुम आपके पास से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं श्रद्धा से लेकर के आसक्ति और प्रेम तो आप सब पहुंच जाते हैं इसी प्रकार ये समस्त महाप्रभु के महावरण माता की विशेषता है जिसका हमने इस लोग को वस्तुई पर बुद्धि सम्मत सुनो कुछ नहीं ना कुछ निर्गुणी ग्रंथ आदि में विश्वास रूप में वर्णन आज चैतन्य महाप्रभु के निकट मैं यही प्रार्थना करता हूँ जब मैं जन्मान कर में ऐसे गुरु के चरण सेवा लिए कभी गुरु के चरण में निष्ठा की आवाज मात्र जागे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा आप गुरु आशीर्वाद करें कि जीवन में कभी गुरु के प्रति हमें श्रद्धा लगे शरणागत हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा
के जावी भाई खबर सुन तो का खोल डब्बा जा रहे
Yeah.
महाराज महाप्रभु वशिष्ठ संबंध है कुछ बोला अंग्रेजी थे
Mahaprabhu's and Mahasi, what happened? They are cleaning the whole area of
place, they are drinking the very special Ganges. Whoever are coming, they are touching their feet and taking their food dust. They became so meek and humble. They understood Mahaprabhu's having come to Sumasi. But this is the special interest of Mahaprabhu. Whoever is taking shelter, he made them understand this Sumasi in the same world, not wait for another world. Prior to Mahaprabhu also, there's Kali Yuga. Only Mahaprabhu incarnate in this world, only once a day of Brahma. For Brahma's day is 984 yugas, about 1,000 yugas. Mahaprabhu is to incarnate only once a time, about 1,000 yugas. Before Mahaprabhu and after Mahaprabhu also, they are renowned for kingdom. But what Mahaprabhu is special? Naam prem malagathi parayla yoga jane. Through this harinam, he gave prem to others. But not for other Kali Yuga. Only when Mahaprabhu came in Dharma Kali Yuga. And moreover, among the Kali Prabhu, ninth in whom are Krishna prem janma jar durdara sane. All incarnation of God is merciful. Their cost is merciful. But special interest on Mahaprabhu, what is that? Whoever seen Mahaprabhu from far distance, by the cosmic master Mahaprabhu infused Krishna prem in their heart. But it not never ever happened for other incarnation. The special interest on Mahaprabhu. When any devotee is doing bhajan, in their perfection, Krishna will give them darshan. When you take darshan, you will be faint. Because it's so beautiful. Because it's showing Krishna Sandarja. He could not check himself. He became faint. Then he said, oh, I am so much beautiful. Much less beautiful. My devotee could not see my room properly. Then what Krishna will do? Krishna will tell, oh my devotee, please look up. So hearing Krishna's sweet voice is so Sandarja. But he woke up again. And see again, Krishna became again faint. And he thought, oh, what can I do for this devotee? Then Krishna, at the death of so soldier, now Krishna will touch by his own lotus finger. Oh my dear devotee, please woke up. Look, who am I? Who in front of you? Getting Krishna's soft touch. Again he woke up, again he came back. Then Krishna spread his fragrance of his body, so Gandha. Getting Krishna's fragrance, he woke up and saw again faint. He could not tolerate all these things. But Sriman Mahaprabhu's Odhatmai Vigraha, to whom he bestowed his mercy, he made them qualified to see Krishna or Mahaprabhu's self-time beauty. And his soft touch, and sweet voice, and sweet fragrance, getting all these things together, never be bent. This is the Mahaprabhu's special mercy. So Mahaprabhu called Odhatmai Vigraha. It never ever happened for other incarnation. So this is the special interest of Mahaprabhu. Moreover, Krishna prem, when Samsundar came to donate prem, for Krishna, Srila Bhagavan Goswami has told that Krishna, Bhagavan ke bahut se avatar hai, kintu latasmi ko prema do bhavatu. Loka pata aur prem ke aise koi aapke avatar bhiya honge honge koi nahi hai. Lekin hamare ye purva chatra gaon santa avatar bhavo santa avatar bhavo Krishna sa bhakta kintu kama latasmi prema do bhavati. This is so many incarnations. They are all auspicious. But who is in this world? Whoever donated Krishna prem? Our acharyas, they explain in this book, in Chaitanya Charitamritam, to whom Krishna bestowed his mercy or given prem, only his associates, not for an ordinary person. So Krishna came in form of Mahaprabhu to bestow his mercy, to donate Krishna prem to all living entities.
Yash Kumar Mahaprabhu. And moreover, Krishna wanted to keep Krishna plain, but he could not do in Krishna incarnation. What is the qualification of Jiva? What is their destination? Mahaprabhu thought by himself. What it is? Srimad Bhagavatam told, Chiral Bhaktam Nijarukta Bhaktam Saprema Namam Bhagavatam Dara Apanam Apamanam Javitadara Bhagavatam Krishna Janai Bhos Pramahamu Prabhate. This paradox of the Buddha Sarivar. Amar Buddha Charin Chiral Karanaya Bhakti Bhagavatam Samar Vaitu Munna Kadikara Sahan Sabhakti Sriyam Sabhakti Sriyam. What Mahaprabhu did? Samar Vaitu Munna Kadikara Sahan. He want to donate Punya Pavitra Vyas. First we have to know why Mahaprabhu Krishna came in form of Mahaprabhu. Famous Nityas Kalitya Sadam Ranmarga Bhukti Loke Kalitya Pacharan. What is famous Nityas? That Krishna came in form of Mahaprabhu test. Or at least that thing. Sinarhaya Pranam Vimati Krishna Vanayiva. This thing is there. It's famous Nityas. And Ranmarga Bhukti. So, internal associates of Krishna Chandra, the Vrajavasis, they have some mood. With the mood that bhakti called Dragavani Bhakti. Hearing Krishna's first time, oh, how Swakas is making fun of Krishna. They are going for conversing, and Rupam is fond of Lakman Bhakti. Krishna thinks towards God. Someone took a bucket out from Pakoda, put some lim leaves. Oh, Madhumangal, this is so sweet, so tasty. They put Madhumangal's mouth, Madhumangal took so many at a time, and very bitter, he became very angry. I support the Maharaj Kamsa, complain against you. You are so nonsense. Oh, hearing this, Samadhumangal thought, I want to be like Krishna Sakar, then I can get fun with Krishna Sakar. Someone, then the first lines of Mother Yashoda, or how we chastise Krishna, Krishna weeping, and Mother Yashoda catch all his ears. Oh, then I can do that. And moreover, hearing the chronicles of the gopis, what that means? Once Rupan released her Radhika so much, Radhika wanted to give her some benediction. Wanted to give her old cloth. Rupan, no, I don't know all these things. Why not? Rukmani told. Oh, Srimati Rani ji, Karunanura Kare Vrindavana Chakravartini, all were mistakes or emptiness of Vrindavan Dham. If you are so merciful, if you want to donate me something, then I want only one jewel. What is that? Vrindavachipu means the enemy of Vrindavan will come to you, meet with you. He must pray to me again and again, holding his hand to me. I want this benediction, not any God, nothing. So hearing this, if someone has been, oh, I want nothing to make salvation of Srimati Radhika. So if somebody has been and followed all these first times, and what is the intention of Shastra to attain this? They call Rag Bhakti. Mahaprabhu came to donate this Rag Bhakti. And what kind of thing Mahaprabhu want to give? Rasan Sabhakti Sriyan. So, who is Krishna's Swami's own? All are Krishna's own, but moreover, all the Jagopis, moreover, Astasakis, moreover, Chandravali and Srimati Radhika, moreover, Srimati Radha Purani. This whole life of life, Radha Mohan Jivan and Jivan, is my life of life. So, who is the one of Krishna? Srimati Radhika. Sabhakti Sriyan. Sriyam means beauty. Beauty of Radhika's bhakti, Mahaprabhu want to donate. What is that? Bhagavad Vasvati or Manjari Bhav? Mahaprabhu came incarnate in this world to donate this to living entity. Not in other incarnation. Even Madhura Pusatana, Ramchandra, Dhira Pusatana, Krishna Chandra, any incarnation of God, never ever donate this thing. The special person of Mahaprabhu, even one fallen soul, so that's it. They can have this dream to attain this if they come in Mahaprabhu's mind and adopt bona fide Gurudev and under his guidance that they do bhajan, they must attain this thing one day. There is no doubt at all. So this is a special person of Mahaprabhu. So many things to do. Mahaprabhu's special
but speakers are here. They want to speak so many things. So now everybody very worried. Why? Because they want to listen from to the lotus feet. But I'm not giving you the chance to ring the bell. Because one moment for that the ringing bell, but my part, oh, other speaker, and then you can make happy ring the bell. But I understood that you have to check me, so I'm listening here. Hare Krishna. Hare Krishna.
Very good. Now, Rasananda Brahmachari Mahaprabhu ka vaishishth ke sambandh mein kuch bole. Bole chha? Ko tha? Bole chhe? Acha. Tumhi bolo ta kuch? তোমাকে এখানে ওকে বললাম বলতে, তাহলে তুমি কালকে বলবে, যখন বলি তখন বলবে না, বলবার সময় আছে। ইউ শুড হিয়ার অল দিস থিংস এন্ড কনক্লুশন, কনক্লুশন ইউ শুড স্পিক অ্যাবাউট কনক্লুশন অফ অল দিস থিংস, দ্য বৈশিষ্ট্য অফ চৈতন্য মহাপ্রভু।
अभी अभी वैष्णवों ने बहुत सुंदर महाप्रभु जी के वैशिष्ट विषय पर वर्णन किया है। ऐसे एक वर्णन आता है, ऐसे जो परब्रह्म जो कि रुक्म वर्ण पुरुष गौर वर्ण कांति जो सप्त कांचन वर्ण इस प्रकार कांचा सोना द्युति ऐसे जो गौर हरि उस गौर सुंदर को जो भी साधना के द्वारा उनका अनुभव किया करके जब आप स्पष्ट से रुक्म वर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान ऐसे विद्वान पुरुष पाप पुण्य से निर्मुक्त होकर माया उपाधि से अतीत होकर के भगवान के प्रिय परिकर बन जाते हैं, जो कि उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, उनकी समता में प्रिय परिकर तत्व प्राप्ति करते हैं। ऐसे वेदों के वर्णन गंगा के भाग्य के भागीरथी के पूर्व तीन पर नदिया के उपवन में जहाँ पर मायापुरा सभाव है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अवधि लगती। अभी अभी आपने श्रवण किया है जो राधा जी के भाव कांति को लेकर के अवतीर्ण किए, विष्ट जीव को जिन्होंने प्रेम दान किया, महाप्रभु जी के अवतार के बहुत से कारण है। उनमें श्री अद्वैताचार्य की भी एक मुख्य भूमिका है, जिन्होंने गंगा जल और तुलसी मंजरी तुलसी दल लेकर के भगवान श्री हरि की आराधना की। नारद के हृदय में भगवान का सिंहासन तो लिया तो भगवान को भी आना पड़ा, तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं अवतीर्ण किए श्री अद्वैताचार्य के। इस प्रकार अनर्पित चरण प्रेम को दिलाने के विदरण करने के लिए उनका आगमन हुआ। राधा प्रणय नहीं हुआ कि उसे हुआ नहीं हुआ, राधा जी की प्रणय माधुरी कैसी है क्या है और कृष्ण के रूपों माधुरी स्वयं रूपों माधुरी कितना है सेवा स्वागत करने के लिए तथा गोपियों को कृष्ण का कृष्ण की प्रतिविधान करते हुए उनको कितना आनंद होता है क्या सुख होता है चीज का अनुभव करने के लिए स्वयं अस्तया के भाव को लेकर के अवधि लगती है। अभी अभी आपने श्रवण किया है कि कृष्ण धाम कृष्ण नाम करे अपराधी में विचार, अपराधी कृष्ण बोलिए राम पाए विकार, गौर नित्यानंद माने नहीं ये सब विचार, नाम लय प्रेम जैन बहे अश्रुधार, कृष्ण धाम कृष्ण नाम अपराध का विचार कर लेते हैं, परंतु महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी के नाम में इतनी उदारता है, इतनी करुणा है, एक बार हा गौर हा निताय कहने से हृदय पिघलने लगता है, आंखों से आंसू बहता है, जन्म जन्मांतर का अपराध मिट जाता है। इसलिए परम करुण जो कि करुणा करुणालय गौर सुंदर इस युग में अवतरित होकर के इस युग को प्रेम जारी किया है, इसी कारण इस युग को कहा गया है धन्य कलयुग, जो कि 1000 चतुर्युग का एक साकेत होता है। इसके बीच में ये जो कुछ समय चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए और इसके बीच में जितने भी पुण्यात्मा है, जितने पहले पहले जन्म के साधक भक्त हैं, जितने विकासशील आत्मा है, वे सभी गौर सुंदर की कृपा लाभ करते हुए भक्त आराधना कर प्रेम लाभ करके इस जगत से पार हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन के ये समय का जो वर्णन हुआ है ये धन्य कलयुग बताया गया, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम रस में भक्ति रस में डूबे हुए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी जिधर से गए आज भी देखने को मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी भारत भ्रमण में जिधर से जिधर को गए उधर की तरफ आज भी देखिए कि जन्म सिद्ध परंपरा से ही लोग वैष्णव हो जाते हैं, भक्तिमान होते हैं। भागवत में यूं तो लिखा है कि जहाँ जहाँ ये पवित्र नदियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु प्रतिपी कृतमला पयस्वती आदि आदि नदियों का वर्णन हुआ है, इन नदियों के जल का स्मरण करने से स्नान करने से लोगों का हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र निर्मल हृदय में भगवान की भक्ति सरावर हो जाती है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी जिस तरह से गए उधर की तरह से आज भी देखने को मिलता है, सभी लोग भक्त वैष्णव बने हुए हैं। इसलिए भारत वर्ष में एक रिवाज है कि पांडव वर्जित देश, कोई कोई देश ऐसा है जहाँ पांडव लोग गए नहीं वो चरम नास्तिक मिलते हैं, अन्य नास्तिक बने हुए हैं, भगवान को और भक्ति पर कोई विश्वास नहीं होता। परंतु महाप्रभु जी की अपार करुणा है, आज विश्व भर में सर्वत्र उनके वाणी का प्रचार, नाम का प्रचार और उस भक्ति धारा का स्रोत प्रवाहित हो रहा है, जो इस धारा में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। तो अभी कहने का है श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस प्रकार अवतीर्ण हो करके उन्होंने व्यवस्थित निकाय की है, जैसे आज अंतरदेव की कथा आती है। अंतरदेव माया को जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी आविर्भूत हो करके उस राधा प्रेम का आस्वादन किया, उस भाव में विवादित होते रहे हैं। तो बाल काल से ही देखा जाता है बाल गौगंड परिशोर और यौवन की जो लीलाएं हैं ये नवद्वीप लीला है। 24 वर्ष तक महाप्रभु जी ने नवद्वीप नदिया में लीलाएं की और 24 वर्ष जो है संन्यास लीला कही जाती है, जिसमें 6 वर्ष तक भक्तों के साथ में कीर्तन में लीलाए और हरिशान कीर्तन में, और 6 वर्ष तक जो कि भारत भ्रमण में दक्षिण भारत और उत्तर भारत की यात्रा में भ्रमण में बिताए। इसी प्रकार और शेष 12 वर्ष राधा जी के महाभाव के उसमें डूब करके स्वयं उस रस का आस्वादन किया है, उस गंभीरा में ही रह करके उस महाभाव रस का आस्वादन किया है। इसमें देखा जाता है जबकि बचपन से ही बाल काल से ही महाप्रभु जी की लीलाएं जो देखी जाती है, जबकि महाप्रभु जी छोटे से बालक हैं, गंगा में जाकर के स्नान करते थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ में जाकर के संस्कृत पढ़ा करते थे और आकर के इधर गंगा में स्नान करते थे, गायत्री पाठ करते थे, उस समय महाप्रभु जी कुल्ला करके मुंह से पानी उनके शरीर पर फेंक देते थे, उससे वे बिगड़ गए। कुछ लोग बिगड़ करके जगन्नाथ मिश्र को जाकर के शिकायत करते, कुछ लोग दाम से भट करते, और किसी ने तो जनेऊ लेकर के अभिशाप भी दे डाला। इसलिए भागवत में वर्णन है
भगवान के लिए भोग बनाया करते, और वो सब
प्रसाद करने के बाद में वो हरियर को फेंक दिया जाता था एक जगह में, तो वो बड़ी स्थान और सब काला काला हो रहा है, वहीं जाकर के बैठ गए और भोले से बालक है तो सारे शरीर में काला को लेवा मोती कर दिया करके और निशान निशान बना करके बैठे हुए हरिया के ऊपर। सचिमान मूर्ति भी आए, बोले अरे ये यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कहीं बैठा जाता है, अपवित्र स्थान है। तो उस समय निमाई ने कहा ये हमें कैसे पता चले कि ये अपवित्र है कि अपवित्र है, तुमने तो हमें स्कूल में भेजा नहीं और न पढ़ने दिया तो मैं कैसे जाऊं, तो ये तो हमारे समझ में नहीं है। फिर जिसने भगवान का भूत बनाया गया वो तो कैसे अपवित्र हो सकता है। इसी तरह से बचपन में बालक निमाई ने ऐसी ऐसी तरह तरह की लीलाएं की है, तो पास पड़ोसी महिलाएं बोली कि हमारे घर के बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा करते और बड़े मुश्किल से भेजना पड़ता है, और आपका बालक पढ़ना चाहता है उसको आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में भेजो, और जब भाग्य से जिसके भाग में जो कुछ लिखा हुआ है वही होगा, कौन उसे रोक सकता है। जब सन्यासी बनना होगा तो कोई रोक सकता है, कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा। अब इसको पढ़ने के लिए भी तब से निमाई बालक निमाई पढ़ने लगे तो पंडित निमाई बन गए। इस प्रकार जब निमाई पंडित हो गए इतने दूर भ्रष्ट सब को टीका सूत्र टीका टिप्पणी के द्वारा सूत्र वित्त व्याख्या के द्वारा सबको हारे सबको पराजित कर, और जितने भी नवनय के पंडित हैं नवद्वीप के सभी पंडित उनसे हार मानने लगे। ये तो बड़ा दुर्घट बालक है, एक बार केशव काश्मीरी पंडित केशव काश्मीर काश्मीर देश के पंडित जिनका नाम केशव काश्मीरी सरस्वती के वर पुत्र भारत विजयी वीर सभी के जन और विजय करते हुए नवद्वीप में पहुंचे कि नवद्वीप को विजय किया जाए जबकि वे भारतवर्ष के अद्वितीय विद्वान बन सकते। इसलिए सरस्वती के वर पुत्र वे केशव काश्मीरी वहां पर गए, वहां जाकर के और ऐलान कर दिया कोई भी यहाँ के विद्वान हो तो ये सब काश्मीरी से साक्षात्कार कर ले, अन्यथा जय पत्र लिख दे। अब पंडित वर्गों में तो भारी खलबली मच गई, भारी समस्या हो गई, अब कहें क्या, कौन विचार करेगा, कौन जाएगा उनके पास, और नहीं तो हम सब का मुंह हार खानी पड़ेगी, अब बड़ी समस्या है। अब तक उन लोगों ने निर्णय किया कि हमारे छात्र जो है ये निमाई पंडित इनसे शास्त्रार्थ कर ले, और इसके बाद में यदि वो हार जाते हैं तो हम लोग अपने आप हारेंगे, और यदि वे जीत जाए तो हमारे बालक से जीत गया ये, हमारा बालक से ही यदि हार गया तो हम लोग तो जीते हुए है ही, तो हमारा अपने आप विजय हो जाएगा। इसी कारण से उन लोगों ने संदेशा भेज दिया केशव काश्मीरी के पास, उन्होंने सुन लिया कि निमाई पंडित से साक्षात से लेना होगा। शाम का समय था, गंगा के किनारे बच्चों की टोली लेकर के वहां पर घूम रहे थे और संस्कृत में सब बातें चल रही थी। इतने में केशव काश्मीरी कुछ लोगों के साथ में टहलने के लिए निकले गंगा के किनारे घूमते घूमते देखा कि बच्चों की टोली और सब संस्कृत में बात कर रहे हैं, सुन करके उनको बड़ा खुश हुआ। देखा बीच में ये बड़ा तेजस्वी बालक, बच्चों से पूछा भाई वो तेजस्वी बालक आप लोगों के बीच में ये कौन है, बोले ये हमारे निमाई पंडित है, हमारे गुरु जी है, हम उनसे पढ़ा करते हैं सीखते हैं। तो उससे मुझे अच्छा यही निमाई है, इन्हीं से ही तो शास्त्रार्थ करने की बात। तो धीरे धीरे सामने आए तो महाप्रभु जी ने भी बड़े सागर के साथ में उनको नमस्कार आदि विधान के द्वारा बैठाए, बोले कि हमने सुना है आप काश्मीर देश से आए हैं, बड़े विद्वान है, तो आप सरस्वती के वरपुत्र हैं, आपके मुंह से हम लोग कुछ कवित्व आपकी प्रतिभा पर कवित्व सुनना चाहते हैं। तो बोले अच्छा आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए। तो बोले कि शाम का समय है और चंद्रमा भी पूर्व दिशा में उदित होने लगे और इधर में गंगा की बड़ी सुहावना दृश्य है, तो इस विषय पर आप कुछ प्रकाश करें और अपनी कविता को प्रकाश करें। तो बड़े खुश हुए और साथ ही साथ आधी तूफान मचा ली कि झटके में सैकड़ों श्लोक वर्णन कर दिया, तो उस महाप्रभु ने जैसे एकानुवाद श्लोक बताया, बोले कि आपको याद कैसे हो, कैसे आपने याद किया। और हम लोग ये बोला जैसे आप सरस्वती के बाल पुत्र है, वक्ता बने हैं, ऐसे मैं सरस्वती की कृपा से सूत्रधार बन गया जो कि मुझे याद हो गई। चलो उसकी कोई बात नहीं है, याद तो जितना आ गया आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस श्लोक के ऊपर में आप गुण और दोष का वर्णन करें, इसमें कितने अलंकार और कितने गुण दोष है। उन्होंने कहा कि मेरे श्लोकों में गुण ही गुण है, कोई दोष का आपका चीज नहीं है, केवल गुण ही गुण लिखे। तो महाप्रभु जी बोले यदि आप क्या क्या हो तो मैं गुण बताओ, मुझे अच्छा बताओ। बोले तुम तो व्याकरण के पंडित हो, अलंकार के विषय में तुम्हें ज्ञान कैसे करे। मैंने तो कुछ सुना था गुरु लोगों से, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बोले अच्छा बताओ। उस समय महाप्रभु जी ने एक एक करके पांच दोष को निकाल दिए, जिसमें जैसे कि भवानी भट्ट का बताया। महाप्रभु जी बोले भवानी भट्ट का, भवानी किसको कही जाती है, भक्त की पत्नी भवानी, शिव जी की पत्नी को भवानी कही जाती है। भवानी के भट्टा कहने से कोई दूसरा पुरुष बन जाता है, पर पुरुष हो जाता है, कोई दूसरा पुरुष हो जाता है, इसलिए इसमें दोष आ जाता है। विभवती अद्भुत गुणा, पहले क्रिया वर्णन करके, क्रियापद वर्णन करके बाद में कर्म को दिया गया, पहले कर्ता इसके बाद में कर्म फिर क्रियापद आता है। तो क्रिया का जब वर्णन हो जाता है इसके बाद में फिर कर्म का वर्णन हुआ तो इससे दोष हो गया। इसी तरह से महाप्रभु जी ने एक एक करके पांच दोष बताए। तो तो ये सारे दोषों का वर्णन हुआ, सुन सुन करके एकदम पंडित जी का सिर तो नीचे झुक गया, ऐसे ऐसे कहां से निकाल दिया ये वाला। और यहाँ पर मुझे हाथ खाने पड़ी, बड़े लज्जित हुए। महाप्रभु जी बोले अच्छा आज तो देर हो गई, कल फिर आपसे सुनेंगे, आज यहीं कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर से सुनेंगे। इतना कह करके चले गए और रात को कैसे उदास में रहिए, सरस्वती की आराधना की, हे माता आपने आज एक बालक से हमें इस प्रकार पराजित करवाया, ऐसे अपमान करवा दिया, क्या बात। तब देवी ने कहा कि देखो हमने वरदान दिया कि तुम सरस्वती मेरे वर पुत्र हो और मेरे आशीर्वाद से सबको स्फूर्ति प्राप्त होगा, अब तुम बताते रहोगे। परंतु ये जो हमारे पतिदेव है भगवान विष्णु है, उनके सामने हमारी क्या चलती, जो कुछ नहीं कह सकती, इसलिए आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके साथ में साक्षात्कार कर लिया। जाओ अभी उनके चरणों में आश्रय लो, वे जैसा कहें वैसे तुम करो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इसे उपदास मेरे महाप्रभु जी के पास में पहुंचे, भोर रात में पहुंच गए। तब महाप्रभु जी ने कहा दिग्विजय करीब विद्वा काल जन है, ईश्वर भज में सही विद्या सत्य है, सही से विद्या फल जानी हम ईश्वर कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृद्धि का। इस प्रकार महाप्रभु जी ने उनको भेजा और वे वृंदावन में आकर के भजन किए। इसी प्रकार महाप्रभु जी की भक्ति में सराबत थी। महाप्रभु जी ने नदिया दौत्य में रह करके महोत्साह की राय की जो कि यह अंतर देव मायापुर कहलाता है। यहाँ महाप्रभु जी गया से लौटने के बाद वे राधा भक्त में विभावित बने रहे और कुछ पंडितों के प्रसिद्ध बातों को सुनने से उन्होंने फिर से संन्यास ग्रहण किया। आप अमर सब को नाम प्रेम की बात कहते हुए सब को सराबोर किया। इस प्रकार महाप्रभु जी की अद्भुत लीलाएं हैं, फिर से वर्णन किया जाएगा। आज मैं यही
करता हूँ। अभी बहुत से वक्ता हैं किंतु समय कम है। कल हम लोग
यहाँ से सवेरे 5:30 बजे यहाँ से हम लोग जावट, नंदगांव, बरसाना इत्यादि स्थानों में जाएंगे। टुमारो इन अर्ली मॉर्निंग एट 5:30 वी विल बाय बस गो टू नंदगांव, बरसाना, जावट एंड सो मेनी प्लेसेस। नंदगांव इज लाइक गोद्रुम, स्वरूपगंज, वेयर ऑल सो मेनी गोप्स आर देयर। महाप्रभु यूज टू गो देयर। और बरसाना में जाएंगे, जावट में भी जाएंगे जहां राधा जी का ससुराल है और गोपियों की और भी ललिता विशाखा सबकी ससुराल है, वहां पर जाएंगे और वहां की लीला कथाओं के साथ में सामंजस्य कर महाप्रभु लीलाओं का वर्णन करें। परसों कहीं नहीं जाना है, परसों हम लोग यहीं रह करके सवेरे शाम दोनों समय में भगवान की कथाओं को, ये लीला कथाओं की, विशेष करके गौरचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और इसके बाद में 7 तारीख को जगन्नाथ जी का उत्सव होगा, द फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ फॉर द जन्म ऑफ आविर्भाव ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वी विल। सो एट दैट टाइम ऑन 6th वी विल बी हियर फ्रॉम डे टू।
इसलिए परम करुण जो कि करुणा करुणालय गौर सुंदर इस युग में अवतरित होकर के इस जीव को प्रेम जारी किया है, इसी कारण इस युग को कहा गया है धन्य कलयुग, जो कि 1000 चतुर्युग का एक साकेत होता है। इसके बीच में ये जो कुछ समय चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित किए और इसके बीच में जितने भी पुण्यात्मा है, जितने पहले पहले जन्म के साधक भक्त हैं, जितने विकासशील आत्मा है, वे सभी से गौर सुंदर की कृपा लाभ करते हुए भक्त आराधना कर प्रेम लाभ करके इस जगत से पार हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन के ये समय का जो वर्णन हुआ है, ये धन्य कलयुग बताया गया जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम रस में, भक्ति रस में डूबे हुए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी जिधर से गए, आज भी देखने को मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु जी भारत भ्रमण में जिधर से जिधर को गए उधर की तरफ, आज भी देखिए कि जन्म सिद्ध परंपरा से ही लोग वैष्णव हो जाते हैं, भक्तिमान होते हैं। भागवत में यूं तो लिखा है कि जहाँ जहाँ ये पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, प्रतीति, कृतमाला, पायस्वती आदि आदि नदियों का वर्णन हुआ है, इन नदियों के जल का स्मरण करने से, स्नान करने से लोगों का हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र निर्मल हृदय में भगवान की भक्ति श्रावण हो जाती है। इसी प्रकार से जैतना महाप्रभु जी जिस तरह से गए उधर के तरह से आज भी देखने को मिलता है, सभी लोग भक्त वैष्णव बनेंगे। इसलिए भारत वर्ष में एक रिवाज है कि पांडव वर्जित देश, कोई कोई देश ऐसा है जहाँ पांडव लोग गए नहीं तो चरम नास्तिक मिलते हैं, आज भी नास्तिक बने हुए हैं, भगवान को और भक्ति पर कोई विश्वास नहीं होता। परंतु महाप्रभु जी की अपार करुणा है, आज विश्व भर में सर्वत्र उनके वाणी का प्रचार, नाम का प्रचार और उस भक्ति धारा का स्रोत प्रवाहित हो रहा है, जो इस धारा में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। तो अभी कहने का है श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस प्रकार अवतीर्ण हो करके उन्होंने व्यवस्थित निकाली की है, जैसे आज अंतरदेव की कथा आती है। अंतरदेव माया को जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी आविर्भूत हो करके उसका अनाथ प्रेम का आस्वादन किया, उस भाव में विभाजित होते रहे। तो ये बाल्यकाल से ही देखा जाता है, बाल्य कौवन किशोर और यौवन की जो लीलाएं हैं ये नवद्वीप लीला है। 24 वर्ष तक महाप्रभु जी ने नवद्वीप नदिया में लीलाएं की, और 24 वर्ष जो है संन्यास लीला कही जाती है, जिसमें 6 वर्ष तक भक्तों के साथ में कीर्तन में लीलाए और हरि संकीर्तन में, और 6 वर्ष तक जो कि भारत भ्रमण में दक्षिण भारत और उत्तर भारत की यात्रा में भ्रमण में बिताए। इसी प्रकार और शेष 12 वर्ष राधा जी के महाभाव के उसमें डूब करके स्वयं उस रस का आस्वादन किया है, उस गंभीरा में ही रह करके उस महाभाव रस का आस्वादन किया। इसमें देखा जाता है जबकि बचपन से ही बाल्यकाल से ही महाप्रभु जी की लीलाएं जो देखी जाती है, जबकि महाप्रभु जी छोटे से बालक हैं, गंगा में जाकर के स्नान करते थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ में जाकर के संस्कृत पढ़ा करते थे, और आकर के इधर गंगा में उधर करके तैरते थे, वहीं पर सुनते थे, खेलते थे। ब्राह्मण लोग आकर के जब स्नान करते थे, गायत्री पाठ करते थे, उस समय महाप्रभु जी कुल्ला करके मुंह से पानी उनके शरीर पर फेंक देते थे। उससे वे बिगड़ गए, कुछ लोग बिगड़ करके जगन्नाथ मिश्र को जाकर के शिकायत करते, कुछ लोग दाम से फट जाते, और किसी ने तो जमीन लेकर के अभिशाप भी दे डाला। इसलिए भागवत में वर्णन है तत्वा सुदुष्ट सुरेश राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगात रंगम, धर्मिष्ठ आर्य वचसा आर्य ब्राह्मण के वचन जो कि उन्होंने जनय पकड़ करके अभिशाप देने वाले जा संसार नाश हो जाए। महाप्रभु जी हस्त रहे उस समय बालक निवाय हस्त लिए बोले जा मेरा संसार नाश हो, कोई बात नहीं, सारी दुनिया के सब का संसार नाश करके मैं भक्ति रस को प्रदान करूंगा। तो इसलिए धर्मिष्ठ आर्य वचसा जगदादर रंगम, जिन्होंने उस ब्राह्मण के वचन को स्वीकार करते हुए संन्यास को ग्रहण किया और सन्यासी बन करके कहा प्राण आप मुरली बगन, कहा जाऊं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, इस प्रकार महाप्रभु जी भाव में विभव। अब इधर में क्या होता है, ऐसे ही जितने भी बच्चियां सब गंगा में जाकर के स्नान करती और गंगा जी के पूजन के लिए सामग्रियां ले जाते, महाप्रभु बालक निमाय बन करके वहां पहुंच जाते, जाकर के जितना संदेश केला और मिठाइयां जो कुछ है सब खाने ले जाते, और गले में जितने फूल की माला है सब गले में डाल देते, और जो कोई भाग के जले जाते डांट के फटकाने लगते, बोले अच्छा जाओ कितना दूर भागे की जाओ, साथ साथ सती होगा और बुढ़ापति मिलेगा, और वो डर के मारे
इतना साप पति होगा, हाँ
और बुढ़ापति मिलेगा, सौतन मिलेगा मुझे, और ये डर के मारे फिर आकर के पूजा करने लगते। उस समय महाप्रभु जी कहते अरे तुम किसकी पूजा करती हो, मेरी पूजा करो, गंगा तुम क्या दासी मोर मही सकी कर आवा पूजो सबे आमी जी को, महाप्रभु जी ने कहा। तो उस समय लड़कियां कहती अरे ऐसा मत करो निमाय, तुम बालक हो तुम क्या करती है, क्या करते हो, क्या बोलते हो, अरे मैं जो बोल रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, गंगा दुर्गा दासी हो, गंगा जी और दुर्गा जी ये मेरे दासी है, महेश मेरे महादेव जी आज मेरे पीकर है, तो किसकी पूजा करते हो, मेरी पूजा करो। और लड़कियां सब सोचती है कहीं नारायण इनमें आविष्ट होकर के आ जाते हैं, ये तो गौर नारायण है, इनकी पूजा करो नहीं तो सर्वनाश कर जाएगा। अब उनकी पूजा करके सभी लड़कियां पूजा करती और जा करके माता जी को जाकर के शिकायत करती सभी माँ को, फिर कभी कभी जगन्नाथ मिश्र बिगड़ करके लठिया लेकर के आके कि निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, उधर से निमाई और कुछ ताकिया और गीता में बदलों में दबा करेंगे, सियाह खोल दिया, सारे शरीर में धूल मिट्टी लग रहा है, स्नान का तो कोई निशान है ही नहीं, आ रहे हैं तो जलना तो स्तर करके लगता है स्नान करते हुए उसको सिखाई नहीं दे रहा है, और ये तो अभी स्कूल से लौट रहा है, तो समझ में ही नहीं आता, रोज दिन ऐसे शिकायत करते और ऐसे कुछ न कुछ नहीं नहीं तरह की गिराएं किया करते। इसी प्रकार जब कि हिमाय और बड़े हो गए उस समय सभी एक समय जबकि विष्णु जी संन्यास में चले गए उस समय सती मां रोने लगी, तो वहां प्रभु जी ने निमाय बालक निमाय ने माता को समझाया, मां बड़े धीरे सन्यासी बन गए, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, आप चिंता नहीं करें, तो बहुत समझाया बुझाया माता जी को शांत करा। इसके बाद में सती मां ने कहा कि निमाय को मैं पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि विश्वरूप पढ़ करके वो चला गया सन्यासी बन करके, अब इसको पढ़ाने से ये भी सन्यासी बन जाएगा, अब पढ़ने को मना कर दिया, स्कूल नहीं जा पाता है, तो निमाय ने क्या किया, कुछ घड़ी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों में कभी कभी विष्णु नैवेद्य भगवान के लिए भोज बनाया करते, और वो सब प्रसाद करने के बाद में वो घड़ी को फेंक दिया जाता था एक जगह में, तो वो बड़े स्थान और सब काला काला हो रहा है, वही जा करके बैठ गए और घोड़े से बालक हैं, तो सारे शरीर में काला तो लेवा होती कर दिया करके और निशान निशान बना करके बैठे हुए हंडिया के ऊपर सचिमा घूमती हुई आई, बोले अरे ये यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कहीं बैठा जाता है, अपवित्र स्थान है, तो उस समय निमाई ने कहा मां ये हमें कैसे पता चलेगी ये अपवित्र है ये अपवित्र है, तुमने तो हमें स्कूल में भेजा नहीं और न पढ़ने दिया तो मैं कैसे जाऊं, तो ये तो हमारे समझ में नहीं है, फिर जिसने भगवान का भोग बनाया गया वो कैसे अपवित्र हो सकता है। इसी तरह से बचपन में बालक बीमारी ने ऐसी ऐसी तरह तरह की लीलाएं की हैं, तो पास पड़ोसी महिलाएं बोली कि हमारे घर के बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते और बड़े मुश्किल से भेजना पड़ता है, और आपका बालक पढ़ना चाहता है उसको आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में भेजो, और जब भाग्य से जिसके भाग में जो कुछ लिखा हुआ है वही होगा, कौन उसे रोक सकता है, यदि सन्यासी बनना होगा तो कोई रोक सकता है, कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा, अब इसको पढ़ने के लिए भेज, तब से निमाय बालक निमाय पढ़ने लगे तो पंडित निमाय बन। इस प्रकार जब निमाय पंडित हो गए इतने दूरधर्ष, सबको टीका सूत्र टीका टिप्पणी के द्वारा सूत्र वित्तीय व्याख्या के द्वारा सबको हारे सबको पराजित कर, और जितने भी नवनय के पंडित हैं नवद्वीप के सभी पंडित उनसे हार मानने लगे, ये तो बड़ा दुर्धर्ष बालक है, एक बार केशव काश्मीरी पंडित केशव काश्मीर काश्मीर देश के पंडित जिनका नाम केशव काश्मीरी सरस्वती के वर पुत्र भारत विजयी थी सभी जगह, और विजय करते हुए नवद्वीप में पहुंचे कि नवद्वीप को विजय किया जाए जबकि वे भारतवर्ष के अद्वितीय विद्वान बन सकते, इसलिए सरस्वती के वर पुत्र वे केशव काश्मीरी वहां पर गए, वहां जाकर के आप ऐलान कर दिया कोई भी यहाँ के विद्वान हो तो ये सब काश्मीरी से साक्षात कर ले, अन्यथा जाय पत्र लिख दे, अब पंडित वर्गों में तो भारी खलबली मच गई, भारी समस्या हो गई, अब कहे क्या, कौन विचार करेगा, कौन जाएगा उनके पास, और नहीं तो हम सब का मुंह हार खानी पड़ेगी, अब बड़ी समस्या है, अब तो उन लोगों ने निर्णय किया कि हमारे छात्र जो है ये निमाय पंडित इनसे शास्त्रार्थ कर ले, और इसके बाद में जब वो हार जाते हैं तो हम लोग अपने आप हारेंगे, और जब ये जीत जाए तो हमारे बालक से जीत गया ये हमारा बालक से ही जब हार गया तो हम लोग तो जीते हुए हैं, तो हमारा अपने आप विजय हो जाएगा, इसी कारण से वो उन लोगों ने संदेशा भेज दिया केशव शास्त्री जी के पास। उन्होंने सुन लिया कि निमाय पंडित से साक्षात कर लेना होगा। शाम का समय था, गंगा के किनारे बच्चों की टोली लेकर के वहां पर जी घूम रहे थे और संस्कृत में सब बातें चल रही थी। इतने में केशव काश्मीरी कुछ लोगों के साथ में टहलने के लिए निकले। गंगा के किनारे घूमते घूमते देखा कि बच्चों की टोली और सब संस्कृत में बात कर रहे हैं। सुन करके उनको बड़ा खुश हुआ। देखा बीच में एक बड़ा तेजस्वी बालक, बच्चों से पूछा भाई वो तेजस्वी बालक आप लोगों के बीच में ये कौन है? बोले ये हमारे निवाय पंडित है, हमारे गुरु जी है, हम उनसे पढ़ा करते हैं सीखते हैं। अच्छा यही निवाय है, इन्हीं से ही तो शास्त्र करने की बात। तो धीरे धीरे सामने आए तो महाप्रभु जी ने भी बड़े सागर के साथ में उनको नमस्कार आदि विधान के द्वारा बैठाए। बोले कि हमने सुना है आप काश्मीर देश से आए हैं, बड़े विद्वान है, तो आप सरस्वती के पर्वत पे हैं, आपके मुंह से हम लोग कुछ कवित्व आपके प्रतिभा और कवित्व सुनना चाहते हैं। तो बोले अच्छा आप लोग क्या सुनना चाहते हैं बताइए। तो बोले कि शाम का समय है और चंद्रमा भी पूर्व दिशा में उदित होने लगे और इधर में गंगा की बड़ी सुहावना दृश्य है, तो इस विषय पर आप कुछ प्रकाश करें और अपनी कवित्व को प्रकाश करें। तो बड़े खुश हुए और साथ ही साथ आधे तूफान मचा दी कि झटके में सैकड़ों श्लोक वर्णन कर दिया। सभी लोग बड़े चमत्कृत हो गए कि सैकड़ों श्लोक एक झटके में एक क्षण भर में ही बता दिए, तो नए नए श्लोक इतने बड़े पंडित है। सभी लोग बड़े आश्चर्य जगे। इतने में महाप्रभु जी बोले कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक श्लोक बताते हैं जो आपने बताया, उस श्लोक का अर्थ और उसके मूल दोष पर आप प्रकाश डालें। तो उस समय महाप्रभु जी ने जैसे इक्यानवे बार श्लोक बताया, बोले कि आपको याद कैसे हो, कैसे आपने याद किया? महाप्रभु जी ने बोला जैसे आप सरस्वती के बल पुत्र हैं, बत्ता बने हैं, ऐसे मैं सरस्वती की कृपा से सूत्रधार बन गया जो कि मुझे याद हो गई। चलो उसकी कोई बात नहीं है, याद तो जितना आ गया आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस श्लोक के ऊपर में आप गुण और दोष का वर्णन करें, इसमें कितने अलंकार और कितने गुण दोष है। उन्होंने कहा कि मेरे श्लोकों में गुण ही गुण है, कोई दोष आपका ठीक नहीं है, केवल गुण ही गुण ठीक है। तो महाप्रभु जी बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बताओ, मुझे अच्छा बताओ। बोले तुम तो व्याकरण के पंडित हो, अलंकार के विषय में तुम्हें ज्ञान कैसे मिले? मैंने तो कुछ सुना था गुरु लोगों से, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे अच्छा बताओ। उस समय महाप्रभु जी ने एक एक करके पांच दोष को निकाल दिए, जिसमें जैसे कि भवानी भर का बताया। महाप्रभु जी बोले भवानी भरता, भवानी किसको कही जाती है? भव की पत्नी भवानी, शिव जी की पत्नी तो भवानी कही जाती है। भवानी के भरता कहने से कोई दूसरा पुरुष बन जाता है, पर पुरुष हो जाता है, कोई दूसरा पुरुष हो जाता है, इसलिए इसमें दोष आ जाता है। विभवती अद्भुत गुणा, पहले क्रिया वर्णन करके, क्रियापद वर्णन करके बाद में कर्म को किया गया, पहले कर्ता इसके बाद में कर्म फिर क्रिया पद आता है। तो क्रिया का जब वर्णन हो जाता है इसके बाद में फिर कर्म का वर्णन हुआ तो इससे दोष हो गया। इसी तरह से महाप्रभु जी ने एक एक करके पांच दोष बताए। तो अभिनिष्ट विज्ञान तो ये सारे दोषों का वर्णन हुआ। सुन सुन करके एकदम पंडित जी का फिर तो नीचे झुक गया, ऐसे ऐसे कहां से निकाल लिया ये बालक और यहाँ पर मुझे हार खाने पड़ी, बड़े लतीत हुए। महाप्रभु जी बोले अच्छा आज तो देर हो गई, कल फिर आपसे सुनेंगे, आज यही कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर से सुनेंगे। इतना कह करके चले गए और रात को केशव काश्मीर ने सरस्वती की आराधना की, हे माता आपने आज एक बालक से हमें इस प्रकार पराजित करवाया, ऐसे अपमान करवा दिया, क्या बात। तब देवी ने कहा कि देखो हमने वरदान दिया कि तुम मेरे बड़ पुत्र हो और मेरे आशीर्वाद से सबको स्फूर्ति प्राप्त होगा और तुम बताते रहो, परंतु ये जो हमारे पतिदेव है भगवान विष्णु है उनके सामने हमारी क्या शक्ति, तो कुछ नहीं कह सकती। इसलिए आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके साथ में साक्षात नहीं किया, जाओ अभी उनके चरणों में आश्रय लो, वे जैसा कहे वैसे तुम करो, तब तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। इसे उपचार मेरी महाप्रभु जी के पास में पहुंचे, बहुत रात में पहुंच गए, तब महाप्रभु जी ने कहा दिग्विजय करीब विद्वार काल जन ईश्वर भजने सही विद्या सत्य सही श्री से विद्या फल जानी हमी ईश्वर कृष्ण पाद पद में जदि चित्त वृद्धि। इस प्रकार महाप्रभु जी ने उनको भेजा और वे वृंदावन में आकर के भजन किए। इसी प्रकार महाप्रभु जी की भक्ति में सराबर थी। महाप्रभु जी ने नदिया दौत्य में रह करके बहुत सारी लीलाएं की, जो कि यह अंतर देव मायापुर कहलाता है। यहाँ महाप्रभु जी वैसे लौटने के बाद वे राधा भक्त में विभावित बने रहे और कुछ पंडितों के प्रतिष्ठित बातों को सुनने से उन्होंने फिर से संन्यास ग्रहण किया। आप अमर सब को नाम प्रेम की बात कहते हुए सब को सराहन किया। इस प्रकार महाप्रभु जी की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, फिर से वर्णन किया जाएगा। आज मैं यही तक
रखता हूँ। अभी बहुत से वक्ता हैं किंतु समय कम है। कल हम लोग यहाँ से सवेरे 5:30 बजे यहाँ से हम लोग जावट, नंदगांव, बरसाना इत्यादि स्थानों में जाएंगे। टुमारो इन अर्ली मॉर्निंग एट 5:30 वी विल बाई बस गो टू नंदगांव, बरसाना, जावट एंड सो मेनी प्लेसेस। नंदगांव इज लाइक गोद्रुम, स्वरूपगंज, वेर ऑल सो मेनी गोप्स आर देयर। महाप्रभु यूज टू गो देयर। और बरसाना में जाएंगे, जावट में भी जाएंगे जहां राधा जी का ससुराल है और गोपियों की और भी ललिता विशाखा सबकी ससुराल है, वहां पर जाएंगे और वहां की लीला कथाओं के साथ में सामंजस्य कर महाप्रभु लीलाओं का वर्णन करेंगे। परसों कहीं नहीं जाना है, परसों हम लोग यहीं रह करके सवेरे शाम दोनों समय में भगवान की कथाओं को, ये लीला कथाओं की, विशेष करके गौरचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और इसके बाद में 7 तारीख को जगन्नाथ जी का उत्सव होगा, द फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ फॉर द जन्म ऑफ आविर्भाव ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु विविल। सो एट दैट टाइम ऑन 6th वी विल बी हियर फ्रॉम डे टू